ॐ नमः सिद्धेय ॐ नमः सिद्धेय ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वर्षायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार सूत्र ग्रंथ का यह दूसरा अध्याय है। उसमें जीव के पांच असाधारण भावों की चर्चा चल रही है और प्रश्नोत्तरों के द्वारा यह अनेक ग्रंथों के उद्धरण दिए जा रहे हैं। उसकी चर्चा करते हुए हम हिंदी में जो पृष्ठ 183 पर आए हैं, दूसरा प्रश्न उसको हम देखेंगे। अभी यहाँ लिखा है प्रश्न, इस सूत्र में कथित, अभी ये पहली सूत्र की बात चल रही है अभी, जिसमें जीव के पांच असाधारण भावों के नाम बताए थे। तो इस सूत्र में कथित पांच भावों में से किस भाव की ओर के लक्ष्य से धर्म का प्रारंभ और पूर्णता होती है? हमें धर्म करना है तो कौन से भाव की तरफ हमें लक्ष्य देना चाहिए, ऐसा प्रश्न है। उसी प्रश्न में कहा है धर्म की पूर्णता होने के लिए भी कौन से भाव की तरफ देखना है। इसका अर्थ यह है कि धर्म की शुरुआत है, धर्म की वृद्धि है और धर्म की पूर्णता है, उसके लिए एक ही मार्ग है, एक ही पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन के लिए कोई अन्य पुरुषार्थ हो और केवल ज्ञान के लिए कुछ अन्य पुरुषार्थ करना पड़े, ऐसी बात नहीं है। एक ही पुरुषार्थ है, एक ही उपाय है। क्या उपाय है, कौन से भाव का लक्ष्य करना है, इसका अभी हमें समाधान करेंगे उत्तर में। देखिए, पारिणामिक भावों के अतिरिक्त यानी उसके अलावा, उसको छोड़कर चारों भाव क्षणिक है। मेरा प्रश्न है कौन कौन से भाव क्षणिक है, हमें नाम चाहिए। हाँ अरुणा बेन, कौन कौन से भाव क्षणिक भाव है? पांच भावों में से कौन से भाव क्षणिक भाव है, आप कहेंगे बेन? हाँ, औपशमिक भाव, शायिक भाव, शायोपशमिक भाव और औदयिक भाव। क्षणिक क्यों कहा? क्योंकि एक समय वाले हैं, पर्याय वाले भाव है, वो पर्याय है ना। और पारिणामिक भाव कैसा भाव है? हमेशा है, शाश्वत है, अनादि अनंत, एक रूप भाव है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो बस है। तो अन्य भाव क्षणिक है, एक समय मात्र के है, समय 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 करके प्रवाह रूप से लंबे काल तक हो सकते हैं। जैसे हमने औपशमिक भाव देखा था, एक समय करते करते अधिक से अधिक कितने काल तक टिकता है? हाँ बोलो वे, औपशमिक भाव कितने काल तक टिकता है, एक एक समय करके? हाँ हाँ, एक अंतर्मूर्त, यथा योग्य अंतर्मूर्त कहेंगे हम, जैसा केवली भगवान ने जाना है, उसको हम सेकंड और मिनटों में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, ख्याल है? अब कहते हैं कि एक समय मात्र के लिए है और उनमें भी, तो क्षायिक भाव कितने समय के लिए है, एक एक समय करके? कितने काल तक रहता है क्षायिक भाव? हाँ, एक एक समय वाला है, परंतु लगातार एक एक समय करके। हाँ पवन जी, कितने काल तक रहेगा? एक अंतर्मूर्त। हाँ, एक अंतर्मूर्त के बाद वो क्षायिक का क्षयोपशमिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठहरो, हाँ क्यों नहीं होगा? क्षायिक हो गया तो अभी क्या होगा उसको? दोबारा नो रिटर्न। तो कितने काल तक रहेगा वो क्षायिक भाव? बहुत अच्छा, अनंत काल तक। एक बार क्षायिक सम्यक तो हो गया, तो सम्यक तो कितने काल तक टिकने वाला है? अनंत काल तक। एक बार क्षायिक ज्ञान यानी केवल ज्ञान हो गया, अंतर्मूर्त में वो वापस नहीं हो जाएगा। नहीं तो अंतर्मूर्त में जान लो सब कौन हमारे शत्रु है। उससे तो वितराग नहीं होगा, वो तो रागी द्वेष हो जाएगा, ख्याल है ना। तो वो काल अनंत काल तक रहेगा। अभी हम देखते हैं यहाँ, तो हमें लक्ष्य करना है। तो ये चार भाव तो क्षणिक है, एक एक समय वाले भाव है, और उनमें भी क्षायिक भाव तो वर्तमान में नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो उसे किसका लक्ष्य करना है? तो मिथ्या दृष्टि के पास क्षायिक भाव है कि नहीं है? है ही नहीं है। तो वो वर्तमान में नहीं है। अब कहते हैं, अभी पूर्णता की बात उठाई ना, इसलिए अकेले मिथ्या दृष्टि को नहीं लिया। तो औपशमिक भाव का लक्ष्य करना कि नहीं करना? तो कहते औपशमिक भाव भी होता है तो अल्प समय ही टिकता है, कुछ समयों तक, असंख्यात समय कहेंगे हम, अंतर्मूर्त है उतने ही काल तक टिकता है। और औदयिक क्षायोपशमिक भाव भी, यानी औदयिक भाव और क्षायोपशमिक भाव समय समय पर बदलते रहते हैं। समय समय पर बदलते रहते हैं क्योंकि उदय कर्मों का एक जैसा हर समय नहीं रहता, और यहां जीव के भावों में भी परिवर्तन होता रहता है। एक ही भाव औदयिक भाव सतत कायम टिका रहे अनंत काल तक, ऐसा बनता ही नहीं, उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। क्षायोपशमिक भाव में भी ऐसा ही होता है, ज्ञान का भी क्षोपशम कम अधिक होता रहता है। अभी हम बहुत शास्त्र के जानकार हो गए, हमारे इतना हो गया, बहुत अच्छा मान रहे, क्षायोपशमिक भाव की कोई गारंटी नहीं हो। ये तो शास्त्र ज्ञान अभी है, और भी फिर आगे के क्या हो जाएगा उसका पता नहीं। वे भी समय समय बदलते रहते हैं, इसलिए उन भावों पर लक्ष्य किया जाए तो वहां एकाग्रता नहीं हो सकती। हमें एकाग्रता करनी है क्योंकि अंतर्मूर्त तक एकाग्रता करने से ध्यान होता है। ऐसे हमने कहां पढ़ा है भाई, वीरेंद्र भाई, पवन जी, आपको पता है? नहीं। हाँ रजनी भाई, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, यानी किसी एक विषय पर हम एकाग्र होते हैं, मन को एकाग्र करते हैं तो उसको ध्यान कहते हैं। तो ऐसा ध्यान हमें होता है कि नहीं होता? हाँ बोलो। नहीं होता अतुल जी, नहीं होता है? अरे आर्त और रौद्र ध्यान तो, हाँ हाँ हाँ, वो मोक्ष मार्ग वाला ध्यान नहीं है, परंतु हमें ध्यान तो होता है, यानी ध्यान की कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि अपने जो कोई विषय मन में चलता रहता ना, उसी बात पर हम कुछ न कुछ विचार चलते हैं। हमें बच्चे का ध्यान करना है तो पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो बच्चा होने के बाद अपने आप वो उसका ख्याल रखते हैं, हम बारम्बार उसका ध्यान रखते हैं ना। तो ऐसे ही यहां कहते हैं कि एकाग्रता नहीं हो सकती। किस पर? समय समय बदलने वाले भावों का लक्ष्य करेंगे, यानी विषय कोई फिक्स है तभी तो हम उसको उसके ओर एकाग्रता से देखते रहेंगे। वो हमारा ध्यान का विषय ही बदलता रहे, एक समय मात्र टिके, तो हम कैसे उसका एकाग्र हो जाएंगे? तो एकाग्रता नहीं हो सकती और धर्म प्रकट नहीं हो सकता। त्रैकालिक पूर्ण स्वभाव रूप पारिणामिक भाव, क्या कहा? पारिणामिक भाव कैसा है? त्रैकालिक, त्रै यानी तीन, तीनों कालों में जो है जैसा है वैसा ही है। और कैसा है? पूर्ण स्वभाव है। स्वभाव में कभी अपूर्णता नहीं है, स्वभाव तो अनलिमिटेड मर्यादा रहित होता है, असीम होता है, और वो किसी ने बनाया हुआ नहीं होता है, और वो त्रिकाल रहता है, उसी को हम स्वभाव कहते हैं। तो त्रैकालिक है, पूर्ण है, पूर्ण स्वभाव रूप। ऐसे पारिणामिक भाव की महिमा को जानकर हमें पारिणामिक भाव का लक्ष्य करना है। तो ज्ञान को कैसे खींचे, कैसे अंदर ले जाए? अंदर बाहर करना है ना हमको। हम स्वयं आत्मा है, पारिणामिक भाव में हम स्वपना स्थापित करें तो उसका लक्ष्य कैसा हो जाएगा? उपयोग अंदर कैसे स्थिर होगा, जिसको हम अंदर बंदर कहते हैं? अरे अंदर कहीं नहीं जाना है, हम बाहर गए नहीं कभी आज तक। हम तो जीव ही है, कभी जीव अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव छोड़कर बाहर गया ही नहीं है, परंतु हमें उसी का लक्ष्य उसी में केंद्रित करना है, अपना लक्ष्य अपने में ही केंद्रित करना है। अपनी महिमा आए बिना ये बात हो नहीं सकती। इसलिए कहते हैं पारिणामिक भाव की महिमा को जानकर उस ओर जीव अपना लक्ष्य करे तो धर्म का प्रारंभ होता है। इसको पारिणामिक भाव कहां से बाहर से लाना है? स्वयं है। और लक्ष्य जो है ज्ञान की पर्याय, वो भी कहीं बाहर से लानी है ना, वो भी उसकी हर समय ज्ञान की पर्याय हो रही है, तो अभी उसके पास किसकी कमी है? पारिणामिक भाव स्वयं है और लक्ष्य देने वाली पर्याय भी मेरी अपनी है, तो उसकी महिमा को हमने नहीं जाना है, उसके स्वभाव को, अपने सामर्थ्य को, अपना जो परिपूर्ण स्वभाव है उसकी सहजता को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम किसको ढूंढे, हमको सद्गुरु को ढूंढना चाहिए, हमको होता है। ओ शुरू में ये उपदेश किसी ज्ञानी से मिलता है, हमें ग्रंथों से पता चलता है, करना नियोग की बात अगर हम सीखेंगे, हो सकता है कि पहले उपशम संयुक्त होकर छूट गया है और वो असंख्यात काल वर्षों का काल चल रहा है, किसी अन्य भाव में से हम आए हैं, इस भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो किसी ग्रंथ का भी निमित्त हो जाता है, भगवान की मूर्ति देखकर भी हो सकता है, तिरियंचों को हो सकता है, मनुष्यों को क्यों नहीं हो? मनुष्यों में हमें तो कितने ग्रंथों की उपलब्धता, इतने साधन अवेलेबल है, अपने स्वभाव की महिमा सुनाने वाले जीव भी है, ग्रंथ भी है उपलब्ध। तो उसकी जो महिमा को जानकर उस ओर जीव अपना लक्ष्य करे तो धर्म का प्रारंभ होता है। तो धर्म कितना स्वाधीन है, देखिए, अपना ही लक्ष्य करना है और अपनी पर्याय के द्वारा ही करना है, उसे रोकने वाला कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ ये कार्य अपने में ही होता है, कार्य कहीं जीव के क्षेत्र को छोड़कर बाहर उसका कार्य होता ही नहीं है। तो ना उसे किसी क्षेत्र को ढूंढना है और न किसी अन्य बात को ढूंढना है कि जो उसको अंदर जाने के लिए मदद रूप हो जाए। ये अंदर तो कहने की पद्धति है, हो हमें क्या लगता है, शरीर मैं हूं और मुझे आत्मा में जाना है, ऐसी जीवों की भ्रांति हो रही है। और उस भाव की एकाग्रता के बल से ही धर्म की पूर्णता होती है।
बार बार आता है ऐसा, हाँ, कि हम इतना सुनते हैं पढ़ते हैं लेकिन आत्मा की महिमा क्यों नहीं आती
है? आपका प्रश्न है, हम इतना सुनते पढ़ते हैं, आत्मा की महिमा क्यों नहीं आती? क्योंकि हमें अंदर रुचिपूर्वक सुनते नहीं हम, या कहीं किसी अन्य में हमारी अभी रुचि अटकी हुई है बाहर में। हो सकता है किसी अपने पुत्र की ओर हो, या कोई पैसे की हो, कोई अन्य चीजों की है रुचि अंदर पड़ी हुई है, कोई यश की महिमा हो, कुछ भी हो, और उसको अपनी महिमा नहीं आती, पर की महिमा आती रहती है, क्योंकि उसको रुचि की वहां कमी है। तो ये रुचि भी कैसे हो जावे? तो जो अभ्यास है, तत्वों का अभ्यास है, जो ज्ञानियों के जो कथन है उसको बार बार सुनने से। सभी अनुयोग कार्यकारी है, हो ऐसा नहीं, कोई कोई प्रथमानुयोग भी पढ़ते हैं तो उसमें तो हम तीर्थंकरों की, चक्रवर्तियों की जो कथाएं देखते सुनते हैं, तो वहां भी पता चलता है कि अरे इतना उनके पास वैभव था, सब छोड़ छाड़ कर वन में चले गए, जिन दीक्षा धारण की और उन्होंने आत्मा का कल्याण कर लिया है। उनके भी पुण्य पाप के संयोगों के कितने ही विचित्र प्रसंग हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, रामायण पढ़े या कोई अन्य भी, हम देखते हैं ना कैसे कैसे संकट किस किस जीव पर आए थे, फिर भी उस काल में भी उन्होंने जो धर्म प्रकट किया है या सम्यक दर्शन के कारण किस तरह से उसमें से वो पसार हो गए हैं, तो हमें बहुत बल मिलता है या प्रेरणा मिल जाती है। करणान योग के भी माध्यम से हमें कितने साफ दिखाई देता है कि तत्व विचार के कारण ही ये सब कुछ कर्मों में उपशमादि होते हैं, स्वयं वो होते हैं, जीव को उसमें कुछ देखने की भी जरूरत नहीं, देख ही नहीं सकता वो। ये तो हमें जो कर्मों की बात ज्ञात है, हमें यानी हर एक को, वो सारे ही आगम के द्वारा ज्ञात है। ऐसा कोई आत्मानुभव के काल में अंदर कुछ कर्म इधर उधर होते दौड़ते हुए नहीं दिखाई देते हैं, दिखाई देंगे तो वो उसका अभी कुछ कल्पना चल रही है। तो ये रुचि कैसे लाना, तो ऐसा क्वेश्चन हमें तो अन्य चीजों में नहीं होते, रुचि कैसे लाना, किसी विशिष्ट चीज में हमारी रुचि सहज बनी रहती है, ऐसे यहां बार बार शास्त्रों का अभ्यास करते हैं तो हमें भी उसमें रुचि हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे को शुरू में स्कूल में जाने के लिए इच्छा नहीं होती, हम जबरदस्ती उसको भेजते हैं और फिर कुछ कालांतर में उसको रुचि हो जाती है। जैसे कोई बिजनेस है, पिताजी का बिजनेस है, और बच्चों को शुरू में तो एजुकेशन पूर्ण होता है तो वहां बिजनेस में जाने का मन नहीं करता है उनका, तो शुरू में तो जबरदस्ती उनको ले जाना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है। एक बार जाते हैं और पैसा कमाने लगते हैं और समय वो आमदनी होने लगती है तो फिर भी रोकना पड़ता है, अभी बहुत हो गया, 8-8 घंटे 10-10 घंटे करते हैं, अभी थोड़ा फैमिली की तरफ भी ध्यान दो, ऐसा कहना पड़ता है ना।
ऐसे खुदा है, ऐसे लोग हंसते हंसते बोलते हैं कि भाई स्त्री अपने हस्बैंड को ऐसे जाने में पुरुषार्थ करते हैं और पीछे पुरुष लोग आगे बढ़ जाते हैं। नहीं धंधा में नहीं, ये
देखो ये हरे की बातें अलग है, उसकी कोई बात नहीं। हाँ बोलो।
बच्चे की जो बात करी, जैसे सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव को आत्मानुभव तो हुआ है, लेकिन जैसे भी आपने रुचि का एग्जांपल लिया कि बच्चों में रुचि, हमारी पर में रुचि अटकी हुई है, तो सम्यक दृष्टि जीव को भी सम्यक दर्शन प्राप्त तो है, सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन क्या उसकी संसार में रुचि नहीं होगी?
हाँ, आपका प्रश्न है सम्यक दृष्टि जीव को क्या संसार में रुचि नहीं है। देखो, सम्यक दृष्टि जीव के लगाव तो हो सकता है, परंतु उसको रुचि तो आत्मा की है। परद्रव्यनतय भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, उसको भले राग, अभी जो उसका राग है उसकी रुचि है वो चारित्र मोह के वश होकर है। पहले जो उसकी रुचि थी वो तो दर्शन मोहनी की थी। आप कहेंगे दर्शन मोहनी के साथ साथ चारित्र मोहनी भी था ना, हाँ, परंतु वहां दर्शन मोहनी का ही हम कहेंगे उसको, क्योंकि उसमें दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी का ही कार्य चल रहा है, वहां की रुचि उसके उस पूर्वक है। समय दृष्टि को जो कुछ अन्य विषय, ऐसा नहीं कि समय दर्शन होता है तो सभी उसकी कुटुंब के प्रति जो उसके प्यार है वो कम हो जाता है, छूट जाता है, या उसको कुछ अन्य विषयों में रस, क्योंकि अभी इंद्रिय विजय कहां हुआ है उसको, 5 इंद्रिय और मन के विषयों में उसका जो रस है वो भले कम हुआ है, जैसे पहले मिथ्यात्व दशा में होता है वैसा तो नहीं है, फिर भी चौथे वाले को तो अविरति कहा है, पांचवे वाले को भी विरता विरत कहा है, उसके भी 5 इंद्रिय और मन से उसका मन हटा नहीं है, यानी उसके पूर्णता, उसकी रुचि नहीं छूट गई है, रस नहीं पूर्ण निकला है, मुनियों के निकल गया है यथायो, परंतु कम तो जरूर हुआ है। सभी कषायों में भी ऐसा समझना, जैसे मिथ्यात्व दशा में जैसे तीव्र हास्य या शोक होता था, सम्यक दर्शन होने पर उसमें कुछ फर्क होगा कि नहीं होगा? रामचंद्र जी को शोक नहीं था, अरे तो इतना विलाप के हम तो अजब लगता है, ये समय दृष्टि ऐसा भी शोक कर सकता है, ख्याल है ना, क्योंकि वी कैन नॉट इमेजिन, उसके पीछे का अभिप्राय अपने ख्याल में नहीं आता। श्रद्धा की जो बात है वो श्रद्धा में तो कोई विपरीतता नहीं वहां पर, तो ये रुचि जो है अंतरंग में ने अपनी तीव्र रुचि पड़ी है, उसके बावजूद भी समय दृष्टि को भी राग हो सकता है, जो अभी चारित्र मोहि उसके 3 कषाय बाकी है, तो वो 3 कषाय के सद्भाव रूप वहां भी चलेगे उसके राग भाव। और कोई प्रश्न है? हाँ,
ये, आपने ये वर्ड रुचि यूज किया है कि जैसे कि आत्मा की महिमा क्यों नहीं आती तो रुचि नहीं है, तो रुचि क्या है और नहीं है, ऐसा है कि रुचि में डिग्री आप कहेंगे?
देखो, रुचि में जो हम रुचि साधारण शब्द जब डालते हैं तो उसमें तो तरतमता होगी, रुचि एक्चुअली क्या है तो श्रद्धा गुण की पर्याय है,
इसीलिए कि श्रद्धा तो ये है अथवा नहीं है, तो फिर रुचि में भी
श्रद्धा में भी ऐसा है ना, अभी मिथ्यात्व की ओर से हम बात करेंगे, मिथ्यात्व भी तीव्र मिथ्यात्व होता है और फिर वो मंद पड़ते चला जाता है, ऐसे यहां पर अभी रुचि ने भी जिसको हम कहते बस मुझे यही चाहिए, अन्य कुछ मुझे नहीं चाहिए, चाहिए की बात यानी आत्मा की ही बात सुहानी लगती है, अन्य किसी में रस नहीं होता है। देखो, जब तत्वज्ञान अभ्यास करने लगते हैं तत्वज्ञान की, तो दुनिया की अन्य बातों से हमें इसकी महत्ता आती है, हम दूसरों को गौण करके यहां चले आते हैं, स्वाध्याय में चले जाते हैं, हमें और सभी पर्याय खुली है ना हमारे लिए, अन्यत्र भी जा सकते थे, परंतु अभी जिसका ऐसा ही आगे बढ़ना है तो उसको अन्य विषयों को गौण करके वो स्वाध्याय की मुख्यता से उसमें चलाता है। अभी छुट्टी लेकर आप स्वाध्याय में आ रहे हो तो छुट्टी लेकर अन्य भी कुछ कार्य कर सकते थे ना, तो आपकी इसमें रुचि है कि नहीं, अभी स्वाध्याय में रुचि हो गई। ऐसे ही स्वाध्याय करते करते आत्मा में भी रुचि हो जाती है। किसी को जल्दी होती है, किसी को कालांतर से होती है, हर एक जीव के अपने अपना क्रम अलग है।
फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि रुचि में भी डिग्रीज हैं ऐसी।
हाँ, डिग्री है, परंतु फिर भी हम रुचि, प्रतीति, श्रद्धा जब कब कहलाएंगे, जब वो सम्यक होगी तब हम कहेंगे उसके आत्मा। हाँ, उसमें भी सम्यक और ऐसा मिथ्या हम भेद कर सकते हैं। अब ये कहते हैं, ये प्रश्न यहां पूछा था कि ये 85 काय का जो श्लोक है, गाथा 56 का, जयसेनाचार्य कृत, उसको उद्धृत करके हम पढ़ेंगे उसको। देखो, 85 काय में कहा है कि मोक्षम कुर्वन्ती मिश्रोपशमिक क्षायिका विधाहा बंधम औदायिका भावा निक्रियाहा पारिणामिकाहा। उसका अर्थ ऐसा है, मिश्र किसको कहते हैं? क्षायोपशमिक भाव को मिश्र कहते हैं। मिश्र, औपशमिक और क्षायिक, ये तीन भाव मोक्ष करता है, औदयिक भाव बंध करते हैं, और पारिणामिक भाव बंध मोक्ष की क्रिया से रहित है, ऐसा 85 काय में कहा है। अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, हो तो प्रश्नकर्ता पूछता है, उपरोक्त कथन का क्या आशय है? वहां शय्याय हुआ है, हाँ, वो आशय करना, आगे पीछे छप गया है शब्द अक्षर। देखो क्या कहते हैं, इस श्लोक में यह नहीं कहा है कि कौन सा भाव उपादेय अर्थात आश्रय करने योग्य है। यहां आश्रय करने योग्य भाव की अपेक्षा से नहीं कहा है, किंतु इसमें मोक्ष जो कि कर्म के अभाव रूप निमित्त की अपेक्षा रखता है, कल हमने देखा ना, निमित्त तो सद्भाव रूप भी हो सकता है और अभाव रूप भी। मोक्ष यानी जो क्षायिक भाव है उसमें कर्म के कौन सी अवस्था की अपेक्षा है? हाँ बोलो, क्षायिक भाव में कर्मों की कौन सी अवस्था पाई जाती है? क्षायिक शब्द कैसे तैयार हुआ? क्षय, क्षय, क्षय यानी अभाव रूप, अभाव रूप। तो कर्म के अभाव रूप निमित्त की अपेक्षा रखता है, वह भाव जब प्रकट होता है तब जीव का कौन सा भाव होता है यह बताया, अर्थात मोक्ष जो कि सापेक्ष पर्याय है, सापेक्ष ने अपेक्षा वाली, कर्म के अवस्था की अपेक्षा जिसमें पाई जाती है उसको सापेक्ष कहा है, उसका प्रकट होते समय तथा पूर्व सापेक्ष पर्याय कौन सी थी इसका स्वरूप बताया है। देखो क्या हम इसकी अटपटी भाषा है ना, हम अपनी भाषा में समझाएंगे कि जो क्षायिक भाव है वो किसका भाव है, कर्म का है कि जीव का है? जीव का है। तो जीव का क्षायिक भाव है तो सामने कर्मों का क्षय पाया जाता है, तो क्षायिक भाव से यहां मोक्ष हुआ उसको हम कहेंगे, तो वहां कर्मों का अभाव रूप निमित्त पाया जाता है। यही बात यहां बताना चाहते हैं कि जो मोक्ष जो है वो क्षायिक पर्याय है, और वहां क्षय वो जड़ की जो जड़ कर्म जो है उसका क्षय को सूचित करने वाली वो पर्याय है। अभी क्षायिक भाव होने के पहले जीव में कौन कौन से भाव हुए थे, अभी धर्म की शुरुआत से लेना है। सबसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि था तो उसके औपशमिक भाव प्रकट हुआ था, औपशमिक भाव के बाद उसको क्षोपशम सम्यक हुआ था ना, तो क्षोपशम भाव था। अभी क्षायिक सम्यक तो हुआ तो क्षोपशम भाव में से फिर बाद में उसको क्षायिक समय दर्शन हुआ तो क्षायिक भाव हुआ, तो क्षायिक भाव होने से पहले उसको औपशमिक भाव और क्षायिक श्रमिक भाव थे, ये बात यहां बताई है। यानी ऐसा ही यहां निमित्त नैमित्तिक भाव है। अभी नीचे से इसी उत्तर में नीचे से चौथी लाइन जाए ना, इसलिए कहा है ये तीनों भाव मोक्ष करते हैं, कौन से? औपशमिक, क्षौपशमिक और क्षायिक। औपशमिक सम्यक तो पहले होता है, फिर क्षावशमिक होता है, फिर क्षायिक होता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इस श्लोक में यह प्रतिपादन नहीं किया गया है कि किस भाव के आश्रय से धर्म प्रकट होता है। ध्यान रहे, पहले चारों भाव स्व अपेक्षा से पारिणामिक भाव है। अभी उसकी चर्चा में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जय धवला धवला आदि में क्या होता है, बहुत सूक्ष्मता से वर्णन चलता है। अभी हम जिस स्तर से हम पढ़ रहे हैं, पहले हमें इतना ही समझना है कि पारिणामिक भाव जो है, स्व तत्व है, वो तो अनादि अनंत कायम रहने वाला भाव है, और उसका लक्ष्य करने से पर्याय में औपशमिक भाव प्रकट होता है। कालांतर से क्षावशमिक सम्यक तो हो जाएगा, क्षायिक सम्यक तो हो जाएगा, और अन्य भी क्षायिक भाव प्रकट हो जाएंगे।
अब ये वर्ड स्व अपेक्षा यहाँ जो यूज किया है, वो स्व कौन स्व है? स्व कौन?
वो अपना अपना भाव, वो उसका स्व है।
भाव
भाव भाव को स्व इन इंडिविजुअल भाव, अपनी अपनी अपेक्षा, वो उसका परिणाम वाले है ना, इसलिए। हाँ,
अभी बात छेड़ी है तो थोड़ा बता दो।
नहीं नहीं, अभी ऐसा है ना, पहले चारों भाव स्व अपेक्षा से परिणामिक भाव है, यानी स्व अपेक्षा ने अभी जो औदयिक भाव है उसकी अपनी अपेक्षा से, जो क्षायिक क्षावशमिक भाव है उसको अपनी अपेक्षा से, अभी इसीलिए मैंने बोला उसको अभी नहीं छेड़ना है।
नहीं देखो,
हाँ, इसीलिए वो देखने का ये परिणामिक लिखा है। हाँ, नहीं, ये क्या है, यहाँ तो प्रिंटिंग मिस्टेक्स, प्रिंटिंग एरर्स बहुत है इसमें। हाँ, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स बहुत है, इसीलिए मैंने सोचा कि कहा कि ये अभी यहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि इन चर्चा में से जो थोड़ा सरल है उसको हम आगे बढ़ाएंगे।
हाँ, नहीं तो कमरा में सब
नहीं जाना। हाँ, तो मैं कहूंगी सबके लिए करणानियोग को पढ़ना नहीं, हाँ, यानी अभी सब करणानियोग को पढ़ना चालू
करेंगे।
नहीं नहीं, उसकी नहीं, अभी जैसे अभी दूसरे गुणस्थान में भी दर्शन मुख का पारिणामिक का है, अभी इसीलिए मैंने बोला, उसकी बात तो हमने दूसरे गुणस्थान में भी नहीं उठाई थी, इसलिए अभी उसकी चर्चा यहीं पर छोड़ देंगे हम। दूसरा आगे का प्रश्न देखो, अच्छा है, ऊपर के श्लोक में कहा गया है औदयिक भाव बंध का कारण है, ये तो समझ में आवे ऐसी बात है ना। हाँ, फिर भी यहां कहते हैं यदि यह स्वीकार किया जाए, यदि आप औदयिक भाव को बंध का कारण कहते हो, तो हमने औदयिक भाव कौन कौन से देखे थे याद है? हाँ बोलो शिल्पा जी। हाँ, गति औदयिक भाव है, कषाय यानी चार गति वाले, फिर कषाय है, इन वेद है, छह लेशा है, और मिथ्यात्व, असंयम, अज्ञान और असिद्धत्व, ये जो आप बंध का कारण कहते हैं, तो गति जाति आदि नाम कर्म संबंधी औदयिक भाव भी बंध के कारण क्यों नहीं होंगे? जो जो जहां, अभी जाति किसको कहते हैं? एकेंद्रीय जाति, नाम कर्म के भेद है ना, एकेंद्रीय जाति है, द्विंद्रीय जाति, तीनद्रीय जाति, चतुरिंद्रीय जाति आदि में नाम कर्म के जितने भेद है 93, उस सबको आदि में रखना, गति जाति, फिर वो तो शरीर, बंधन, संघात, सहनन, संस्थान, अंगोपांग, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सारे जो नाम कर्म है, वहां भी कुछ न कुछ उसके उदय रूप फल मिल रहा है जीव को या शरीर में, तो उन सब को आदि नाम कर्म संबंधी औदयिक भाव भी बंध के कारण क्यों नहीं होंगे? प्रश्न ख्याल में आता है, नाम कर्म के उदय में जो जो बातें बनती है उस सब को बंध का कारण क्यों नहीं कहते? कर्म के उदय में होने वाले भाव उसको औदयिक भाव कहा है, तो वहां भी जीव को बंद होना चाहिए था, उसका समाधान
उसमें एकत्र किया, वो मिथ्यात्व हो गया, वो बंद
का। हाँ, वो अभी बताएंगे उसमें कि क्यों नहीं बंद होता है, बंद का कारण कौन है। श्लोक में कहे गए औदयिक भाव में सर्व औदयिक भाव बंद के कारण है ऐसा नहीं समझना चाहिए, लिखा ना, ये असिद्धत्व नाम का औदयिक भाव है या जो कोई है, तो सभी भावों को यह नहीं लेना है, किंतु यह समझना चाहिए मात्र मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, ये चार भाव बंध के कारण है। ये हमने तो वो सूत्र भी पढ़ा है, आश्रव किसको कहा है, बंध के हेतु किसको कहा है। देखो प्रमाद भी इसमें ही गर्भित है, कहीं चार कहते कहीं पांच कहते, कहने का प्रयोजन तो यही है। कौन कौन है? मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग। मिथ्यात्व अवस्था में चारों ही होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को मिथ्यात्व अभी रह गया है और ये योग ही गया या कषाय ही गया। उस दिन बात की थी ना वो नौ नौ वाली। हाँ, तो जिसको मिथ्यात्व है अभी उसको चारों ही है। मिथ्यात्व चला गया है, चौथे गुणस्थान वाला है, उसको अभी क्या बाकी है? असंयम है, कषाय है और योग है। कषाय जितने चौकड़ी बाकी है उसको कषाय है कि नहीं? अब असंयम चला गया, अभी कोई संयम या मुनिराज भी हो गए तो उनको अभी क्या बात क्या बाकी है? कषाय और योग बाकी है। और कषाय भी चला गया, कौन से गुणस्थान में गया? दसवें में था, आगे नहीं है, फिर भी वहां योग है। तो योग के कारण वहां जो कोई प्रकृति आती है साता वेदिनी की, वो वहां भी आ जाएगी। तो यहां कहते हैं मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, ये चार भाव बंध के कारण है। तो फिर प्रश्न उठता है औदयिका भावा बंध कारणम, इसका क्या अर्थ है? औदयिक भाव बंध के कारण है, इसका अर्थ क्या होता है? तो अभी उसको समझाते हैं। इसका यही अर्थ है कि यदि जीव मोह के उदय में युक्त होता है तो बंध होता है। देखो आठों ही कर्मों का उदय हर समय चलता है। ज्ञानावरण के उदय में कुछ ज्ञान प्रकट है और कुछ अप्रकट है, तो प्रकट ज्ञान से बंध होता है क्या अप्रकट ज्ञान से होता है? हाँ हाँ बोलो प्रबोध भाई, बोलो आप। इतना ज्ञान है हमारी कैपेसिटी, अरे अभी हमारा इतना ज्ञान प्रकट है और इतना अप्रकट है, ढका हुआ है, हमें है ही नहीं इतना। तो ये प्रकट ज्ञान से बंध होता है कि अप्रकट? हाँ बोलो आप पीछे, प्रकट प्रकट। नाम क्या आपका? नितिन, नितिन हाँ बोलो। इन दोनों में से बंध काहे से होगा? जो ज्ञान प्रकट नहीं उससे होगा बंध, के जो प्रकट ज्ञान है उससे बंध होगा? यू हैव टू गेस।
प्रकट ज्ञान जो है वो आपको आपका जो सम्यक ज्ञान है उसका रूप है हमारे। तो यदि वो राइट ज्ञान है
अच्छा आप क्या कहते बेटा? अप्रकट ज्ञान से जो यहाँ नहीं है उससे बंद होगा। अभी हमें अवधि ज्ञान नहीं है। हाँ बोलो भाई, आप बताना चाहते? हाँ आप कुछ बताना चाहते थे पीछे? नहीं नहीं अच्छा। शिल्पा क्या कहते? देखो क्या कहते, ज्ञान से तो बंध नहीं होता है। ये ज्ञान से बंध ये क्यों है? ज्ञान क्या है? हमारा स्वभाव का अंश है ना। अरे स्वभाव से बंध होने लगा तो ये बंध से छुटकारा कभी तीन काल में नहीं हो सकता। हाँ रागादि से बंध होता है। तो ये ज्ञान अभी हमें अवधि ज्ञान नहीं इसलिए बंद हो रहा है क्या? मति श्रुत ज्ञान प्रकट है इसलिए बंद हो रहा है? नहीं, उसमें तो कोई बंध का सवाल ही नहीं है। दर्शन गुण में भी ऐसा ही समझना। अंतराय कर्म के अपोजिट जो हम दान लाभ भोग जो वीर्य हमारा उससे में ऐसा ही समझना। हमने मोहनी को अभी अलग रखा है। अभी अन्य जो आघाती कर्मों के उदय में देखते हैं, आघाती कर्मों के उदय में वेदनीय के उदय में संयोग अच्छे बुले बुरे मिलते हैं। तो अच्छे संयोग बंध के कारण है सरलाबेन के बुरे संयोग पक्का? संयोग से कुछ नहीं होता, परंतु पहले में पहले हमें धर्म करना है, स्वाध्याय करना है, तो हमें पहले क्या करते हैं? पहले जरा संयोग बदल दू, लड़कियों की शादी कर दू, लड़के को धंधे में लगा दू। यहाँ की बात नहीं है, तो क्योंकि यहाँ तो अच्छे बेचारे अपने इंडिपेंडेंट है, माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं देते। अच्छा माँ बाप बिचारे किसको? जो उनके पीछे कोई बिचारे नहीं है, अपना मोह अटका है ना, हम बहना बहाना करते हैं।
हमारे यहाँ हस्बैंड को रिटायर कर दो। बिचारे
तो हमने देखा वेदनी के उदय में यानी जो संयोग बुरे हो या अच्छे उसको भी बंद नहीं कर। आयु कर्म के उदय में आयु चलती रही। लंबी आयु में बंद ज्यादा होता है कि छोटी आयु के कारण ज्यादा होता है? हम 100 साल वाले हैं और वो करोड़ पूर्व वाले थे, इसलिए उनको ज्यादा बंद होता है ना। कुछ नहीं फर्क पड़ता, यानी हमें तो देखना है ना किससे किससे होता है। अब कौन रहे नाम कर्म के उदय में, गोरा शरीर मिला तो बंदा और काले शरीर वाले को कम होगा कि ज्यादा होगा? क्या कहते प्रभु भी, आप क्या कहते? कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाम कर्म के उदय में शरीर की कैसी भी रचना क्यों नहीं हो, मैं शरीर रूप हूं और मैं काला हूं, मैं हिंदी हूं, मैं लूला हूं, मैं लंगड़ा हूं, मैं गोरा हूं, ये जो जीव मोह करता है ना वो बंध का कारण है। नाम कर्म के उदय में जो कोई शरीर की रचना, शरीर नहीं कहता कि तू मुझे अपना मान, यही मूर्ख जो जीव है वो शरीर को यह मैं हूं मानता है। शरीर ने कभी नहीं माना मैं जीव हूं, शरीर मान ही नहीं सकता। और कौन सा रह गया, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, उसके कारण भी कोई बंध का सवाल नहीं है। तो एक हमने छोड़ दिया था मोहनीय कर्म, तो मोहनीय के कर्म हम कर्म पर आरोप करते हैं। जीव स्वयं यहां मिथ्यात्व और राग द्वेष के परिणाम करता है, वे ही बंध के कारण है। अन्य कर्मों के उदय में जो कोई सामग्री मिलती है, जो कोई उसका फल होता है, उससे कोई बंध नहीं होता है। और यदि जीव मोह नहीं करे, राग द्वेष नहीं करे, तो बंध नहीं होगा। तो जीव स्वयं ही उसमें मोह राग द्वेष करता है और स्वयं नया नया बंध चालू रखता है। इसलिए यहां कहते हैं देखो, यदि जीव मोह के उदय में युक्त होता है, मोह के उदय में युक्त होना यानी स्वयं मोह राग द्वेष करना, कर्म स्वयं कोई जबरदस्ती नहीं करता है, जैसे हम परिणाम करते हैं उस मात्रा में कर्म का मोह कर्म का उदय होता है। हम यहां तत्व विचार करेंगे, मिथ्यात्व रूप नहीं परिणमेंगे तो सत्ता में पड़ा हुआ मिथ्यात्व कर्म भी दब जाता है, दूसरे रूप सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आएगा, बाद में सम्यक तो बना रहेगा। तो आवश्यक नहीं है कि वहां मिथ्यात्व का ही उदय होता रहे, पड़े हैं सत्ता में पड़े हैं मिथ्यात्व के कर्म। अभी हमने देखा था ना बोर्ड पर भी, देखो उदय में युक्त होता है तो बंद होता है। द्रव्य मोह का उदय होने पर भी, द्रव्य मोह ने जड़ कर्म मिथ्यात्व नाम का जो कर्म है या राग द्वेष रूपी जो जड़ कर्म है, द्रव्य कर्म है, इसका अर्थ है दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के जो कर्म है उसका उदय होने पर भी, यदि जीव शुद्धात्म भावना के बल से, शुद्धात्म भावना ने शुद्धात्मा में लीन होना, भावना ने भवन उस रूप होना, यानी शुद्धात्म कौन है? शुद्धात्मा, आप कहेंगे हम शुद्धात्मा कहां है, हम तो विकार वाले हैं, परंतु यहां पारिणामिक भाव कैसा है, वो शुद्ध हुआ है कि अशुद्ध हुआ है? वो अनादि अनंत जैसा है वैसा है। पारिणामिक भाव में ना कोई बंध है ना उसमें कोई मोक्ष होने वाला है। पारिणामिक भाव अनादि अनंत जैसा है वैसा ही, जैसा निगोद में वैसा ही सिद्ध में है, वो तो अनादि अनंत एक रूप भाव, इसको शुद्ध कहते हैं। उस रूप मैं हूं मानकर उसको जानते रहना है, उसको कहते हैं शुद्धात्मा की भावना करना। तो शुद्धात्मा भावना के बल से भाव मोह रूप परिणमित न हो तो बंद नहीं होता। भाव मोह ने वो स्वयं राग द्वेष रूप मिथ्यात्व रूप नहीं परिणमा तो वहां जो द्रव्य कर्म अंदर पड़ा है वो भी दब जाता है, उसकी अन्य अवस्था होकर जो कुछ हृदय में आता है तो वहां बंध का अभाव हो जाता है, बंध होना मिटता चला जाता है। यदि जीव को कर्मोदय के कारण बंध होता हो तो क्या कहते हैं? कर्म का उदय है इसलिए जीव को बंध करना ही पड़े, ऐसा यदि होता तो संसारी के सर्वदा कर्मोदय विद्यमान है। संसारी जीवों को कर्म का उदय हर समय विद्यमान है, यानी हर समय होता ही रहता है। अभी हमारे सभी आठों ही कर्मों का उदय निरंतर चल रहा है, इसलिए उसे सर्वदा यानी हमेशा बंद होगा, कभी मोक्ष होगा ही नहीं। तो आठों ही कर्मों का उदय होने पर हम उस मोह राग द्वेष रूप नहीं परिणमते हैं तो सामने कर्मों की भी अवस्था बदलकर नया बंद होना रुक जाता है। इसलिए यह समझना चाहिए कि कर्म का उदय बंध का कारण नहीं है, किंतु जीव का भाव मोह रूप से परिणमन होना बंध का कारण है। भाव मोह ने जीव को जो भाव होते हैं, मिथ्यात्व या राग द्वेष, ये जीव के भाव है, उससे नया बंध होता है। देखो क्या होता है, पुराने कर्मों का उदय डायरेक्ट नए का बंध नहीं कर सकता। पुराने कर्मों के उदय में जीव उसमें मोह राग द्वेष करे तो ही नया बंध होता है। अब यहां मोह राग द्वेष हम नहीं करें तो क्या होगा, पुराने कर्मों के वो उदय रूप जो कोई अवस्था उसमें जो कोई चेंज होना है, उपशम होना है, उपशम होना है, वो हो जाता है और ये नया बंधन नहीं होता और जीव का मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। अब यहां प्रश्न, ये आपके दूसरा गुण स्थान आ गया है। प्रश्न है, पारिणामिक भाव को कहीं किसी गुण स्थान में पर्याय रूप से वर्णन किया है। पारिणामिक भाव तो अनादि अनंत शुद्ध भाव है, जीव का स्वभाव भाव है, तो कहीं किसी गुणस्थान में उसको अन्यथा भी वर्णन है तो उसको कहते हैं। हाँ, दूसरा गुणस्थान दर्शन मोहनीय कर्म की उदय उपशम क्षोभशम या क्षय, इन चार अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था की अपेक्षा नहीं रखता। ये किसी भी अवस्थाओं में जो एक्स्ट्रा हो गया हिंदी में, डबल हो गया, चार अवस्थाओं में से आगे वाला किसी भी रखना, पहले वाला किसी भी अवस्थाओं में से वो निकाल देना, किसी भी अवस्था की अपेक्षा नहीं रखता, इतना रखना है। इतना बताने के लिए वहां श्रद्धा की पर्याय अपेक्षा से पारिणामिक भाव कहा गया। क्या है, हमने अभी विस्तार से देखा ना। देखो दूसरा गुणस्थान हमने देखा था, दूसरा गुणस्थान किसके होता है, जो औपशमिक समय दृष्टि है। औपशमिक सम्य दृष्टि ने क्या किया है, वहां उसके कर्मों में क्या बात बन गई है, अभी उसको सम्यक तो हुआ है, सम्यक तो हुआ है ने वो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय चालू हो गई है। वो सम्यक तो हुआ है, उसके पहले उसने क्या किया था, अंतर यानी गैप भी हुआ था और गैप के ऊपर के सभी परमाणुओं को उसने उपशमित किया था। उपशम सम्यक दर्शन शुरू होने के बाद अभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसके कोई उसकी अवस्था बदली नहीं है, ऑलरेडी उपशमित है, अभी नया कुछ उसमें कार्य नहीं हो रहा है। सम्यक्त्व के काल में श्रद्धा गुण की पर्याय जैसी है वैसी ही बनी है, अब उन कर्मों में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ, उसका सम्यक्त्व चलता रहा और कुछ काल के बाद क्या हुआ, अनंतानुबंधी का उदय आया। दर्शन मोहिनी में क्या हुआ, नया कुछ परिणमन हुआ क्या उस समय, सॉरी दर्शन ये दर्शन मोहनीय में तीन टुकड़े अंदर ही है, तीन टुकड़े तो हो चुके हैं और वो उसका कार्य, परंतु उसमें उपशम हुआ क्या नया, और उपशमित ऑलरेडी थे, उसमें क्षय भी कुछ नहीं है, उदय भी नहीं उसका, न क्षय उपशम है, कुछ नहीं है, तो अभी उसमें कुछ नया वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है, इसलिए वहां कहते हैं दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से पारिणामिक भाव है, यानी उसमें कुछ नया चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए कहते हैं दूसरे गुणस्थान में दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से पारिणामिक भाव चल रहा है। जैसा है वैसा ही है, हाँ, वो पारिणामिक भाव यानी स्वभाव भाव त्रिकाल एक रूप भाव वो नहीं समझना उसमें।
तो अपने अनंतानुबंधी का उदय है वो क्या
था, दूसरे गुणस्थान में
तो फिर वो जो सम्यक मिथ्यात्व
साधन में आने वाली की बात चल रही है, औपशमिक सम्यक्त्व का काल चल रहा है, उसमें उपशम सम्यक्त्व काल पूरा होने के थोड़े पहले, एक समय कहो या छह अवली कहो, उतने काल में अनंतानुबंधी का उदय हो जाता है और जीव दूसरे सासाधन गुणस्थान में आता है। सासाधन गुणस्थान में क्या पोजिशन है दर्शन मुनि कर्म की, ऑलरेडी जो उपशमित है वो उपशमित है, उसके नया कुछ चेंज नहीं हुआ है, इसलिए उसको पारिणामिक कहते हैं।
दूसरा पारिणामिक
देखो उस समय, जिस समय अभी उपशम सम्यक तो भी चल रहा है, उस समय उपशम किसका हुआ है, दर्शन मोहिनी का हुआ है और अनंतानुबंधी का हुआ है। जब औपशमिक भाव चल रहा है उस समय दूसरे अन्य किसी कर्म का वहां उदय है कि नहीं है, उसी समय औदयिक भाव चल रहा है ना, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संज्वलन का तो उदय चल रहा है, उतना औदयिक भाव वहां चल रहे हैं, गति औदयिक भाव चल, सभी बाकी औदयिक भाव चल रहे हैं वहां, असंयम चल रहा है, मिथ्या तो नहीं है परंतु अन्य औदयिक भाव चल रहे हैं, परंतु यहां मुख्यता से किसी एक की मुख्यता से, क्योंकि हमने पहले चार गुणस्थानों में दर्शन मुनि की अपेक्षा से बात होती है, इसलिए उसका कौन सा भाव है उसकी बात यहां करेंगे। चारित्र मुनि की अपेक्षा से बात करेंगे तो वहां औदयिक भाव भी है, उसकी यहां चर्चा ही नहीं ना। अभी आगे
ऐसा हो सकता है कि दर्शन मोह की हर समय की अवस्था वही रहती है, लेकिन बाकी के जो कर्म है उसकी अवस्था में समय समय कुछ पलटन होती है।
नहीं, अंतर्मुहूर्त तक दर्शन मोहनी की वही अवस्था होगी जो औपशमिक चल रही है, उसमें नया कोई चेंज नहीं हुआ, ये बात बतानी।
दर्शन मोह भी ऐसा रहा, पढ़ने में हो गया, लेकिन बाकी के सब जो कर्म है,
बाकी के सब कर्म तो पहले भी उदय रूप थे, अभी अनंतानुबंधी का नया उदय हुआ है। दूसरे गुणस्थान में आने का कारण क्या है? अनंतानुबंधी का उदय।
लेकिन जब उपशम अवस्था चल रही थी जो अनंतानुबंधी जो उपशमित हो गए हैं, तभी दर्शन मोहनी तो अभी भी उपशम में ही है जब दूसरा गुणस्थान में है। लेकिन जब समझिए कि चौथे तो जो बाकी जो अनंतानुबंधी की जो उपशम रूप अवस्था है, क्या उनमें कुछ फेरबदल होता है? जब
देखो देखो क्या है, हमने जो अंतर देखा था ना, गैप देखी थी, गैप देखी थी तो मात्र दर्शन मोहनी में ही थी, और गैप के ऊपर के जो दर्शन मोहनी के परमाणु थे वो उपशमित थे। अनंतानुबंधी उस गैप में भी था, सत्ता में गैप में था, परंतु उदय होते होते अन्य रूप उदय में आता था वो हाँ, इसलिए उसका उपशम अलग टाइप का था और दर्शन मोहनी का उपशम अलग टाइप का था। दोनों के उपशम में भेद है, दर्शन मोहनी का तो प्रशस्त उपशम था, अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम था, तो उदय रूप नहीं था इसलिए उसका उदय हो सका वहां पर, और दर्शन मोह का उदय नहीं हो सका, ये बात है। हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या है, क्या है? अभी हमें तो इसके अनुसार जा रहे हैं ना, इसलिए वो थोड़ा कुछ जैसे प्रश्न आते हैं वैसे थोड़ा कठिन भी हो जाता है। देखो अभी नीचे का हम देखते हैं, जीव का क्या कर्तव्य है। अभी हम भावों की चर्चा छोड़ के हमारा कर्तव्य क्या है वो देखेंगे, जीव का हमें जब जीव का कर्तव्य तो हम जीव पर छोड़ते हैं, कर्म की बात कर्म पर छोड़ते हैं और हम छूटे रह जाते हैं। जीव को यानी मुझे सब ऐसा समझे, अपने को, जीव को तत्वादि का निश्चय करने का उद्यम करना चाहिए, हमें पुरुषार्थ करना है। तो क्या पुरुषार्थ करने हैं, या हमें आगे बढ़ने के लिए आप कुछ अभी हमें मार्गदर्शन करे सके थे ना, क्या करना है ये इन्होंने बताया है, मार्गदर्शन कर रहे हैं कि जीव को तत्वादि का है उसमें क्या समझना है, तत्व है, द्रव्य है, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप है, तत्वादि का यानी स्व और पर का ये सब समझना है, इसमें मोक्ष मार्ग में आवश्यक ऐसी जो जो बातें हैं उसमें छह द्रव्य है, सात तत्व है, ये जो प्रयोजनभूत सात तत्व है, देवशास्त्र गुरु है, स्व कौन और पर कौन है, आदि में अन्य भी जो सिद्धांत है, निमित्त नैमित्तिक या निमित्त उपादान का जो है, पांच समवाय है, आदि आदि जो बातें हैं जो हमें तत्व का निर्णय करने में उपयुक्त है, आदि का निश्चय करने का उद्यम करना चाहिए। निश्चय करने ने जिस पद्धति से जो स्वरूप उसका एक्चुअल है वैसा हमें निर्णय करना है। हम क्या करते हैं जब तत्व पढ़ते हैं तो हमें उसमें से क्या भासित होता है उसको देखते हैं। देखो बहुत जगह ऐसे, अभी यहां की बात नहीं है वो, परंतु अमेरिका में ही हम पहले कहीं गए थे तो वहां हम कहा उन्होंने हम स्वाध्याय करते, क्या करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, महीने में एक बार। अच्छा, और फिर क्या, फिर एक जन कोई कहे मुझे ऐसा लगता है, फिर वो अपनी बात प्रस्तुत करेगा, दूसरा कहेगा मेरे बुद्धि में ये ऐसा आया है, वो उसकी बात प्रस्तुत करेगा, फिर तीसरा कहेगा मेरे विचारों के अनुसार, यानी वो जो भगवान ने कहा है वो बात कहीं रह जाती है और
डिबेट चालू हो जाता है।
तो 10 लोग अपने विचार प्रस्तुत करते, अरे हमारे तो विचार अनादि से मिथ्या रूप हो रहे हैं, ये भगवान की दृष्टि में क्या है वो पहले देखेंगे ना, तो हमारी दृष्टि में जो दिख रहा है, तो हमारी दृष्टि यदि दूषित है तो हमारी दृष्टि में क्या आ रहा है उसको थोड़ा गौण करेंगे, और भगवान ने क्या बताया है उस रूप से हमें समझना चाहिए। मेरी दृष्टि में भगवान महावीर कैसे थे उनको नहीं देखना है, भगवान की दृष्टि में मैं कौन हूं उसको देखना है, क्योंकि हमने अभी अपनी दृष्टि से शरीर को ही मैं माना है, राह को ही मैं माना है, अभी थोड़ी देर के लिए जरा भगवान की दृष्टि को जरा मुख्य करेंगे ना, अभी तक तो अपनी ही दृष्टि से काम चलाया है तो अनंत भव हो चुके, भगवान की दृष्टि से देखेंगे हो सकता है दो चार भव में काम हो जाएगा, मोक्ष में पहुंच जाएंगे।
भगवान को
तो तत्वादि का निश्चय करने का उद्यम करना चाहिए, ये निश्चय देखो जैसे जिस जैसा तत्वों का स्वरूप बताया है वैसा पहले हमें समझना है, समझकर थोड़ा उसका अभ्यास करने से उसकी सही बात ख्याल में आती है, तो उस पर हमें विचार करना चाहिए, नहीं कि भगवान ने कहा बस हमको मानना ही है, ऐसी नहीं बात, तो ये ऐसा कहा है मैं अब तक ऐसा समझता था तो इसमें कौन सा सही है, फिर उसको हेतु ये सारे जो प्रमाण नए निक्षेप उसको शास्त्रीय नाम मत दो, परंतु उसको हम विचार करेंगे और वो क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय करेंगे, कब तक जैसे भगवान ने बताया है वैसा जब तक हमें भाषित नहीं होता है तब तक विचार करें। स्कूल में हम गणित सॉल्व करते थे और वो पीछे उत्तर लिखे हुए होते थे, है ना, तो सॉल्व करने के बाद हम देखते थे तो हमारा कोई उत्तर अलग ही आता था और वो पुस्तक में कोई अलग होता था, क्या करते थे पुस्तक में सुधार करते थे ना अरे जब तक अपना उत्तर वैसा नहीं आता है स्वयं करेंगे, फिर हम क्लासमेट को पूछेंगे अरे तेरा क्या उत्तर है मेरा ऐसा है, दोनों को ही नहीं सोचते तो फिर और किसी को दूसरे को कोई होशियार लड़का है उसको पूछेंगे, हा? नहीं तो क्या करेंगे टीचर को पूछेंगे, फिर टीचर समझा देंगे इस विधि से करना ये पद्धति ये है, जब तक वो वैसा उत्तर नहीं आता तब तक हम स्वयं बारम्बार सॉल्व करते, यहां भी ऐसा ही करना है, जैसा जिस प्रकार से जिस पद्धति से जो स्वरूप तत्वों का बताया है हमें जब तक वो भाषित नहीं होता है तो हमारी कहीं ना कहीं भूल होती है, ऐसा समझकर बार बार तत्वों का अभ्यास करना चाहिए, फिर उससे औपशमिकादि सम्यक्त्व स्वयं होता है। क्या कहा, हमें क्या करना है तत्वों का अभ्यास करना है, तो तत्वों का अभ्यास करने से फिर सम्यक्त्व तो कैसा होगा, स्वयं वह हो जाएगा, उसकी चिंता मत करना, हमें पहले में पहली चिंता किसकी है समय दर्शन, महिमा किसकी आती है समय दर्शन, कभी पारिणामिक भाव की महिमा हमें आई ही नहीं है, ख्याल है ना, ये पर्याय रूप जो समय दर्शन है, नहीं मुझे इस भाव में समय दर्शन चाहिए, परंतु मैं अभी शाश्वत अनादि अनंत परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूं ऐसा कभी हमने स्वीकार नहीं किया, जो है उसकी महिमा नहीं ना, और वो पर्याय रूप भाव की होती है महिमा, तो हमने यहां भी पढ़ी शास्त्र में कथन भी आता है, फिर भी हमें वो कैसे प्राप्त होगा उसकी विधि जो बताई है उसको हमें ख्याल में लेना है, तो क्या कहते देखो औपशमकादि सम्यक तो स्वयं होता है, द्रव्य कर्म के उपशमादि, उपशम आदि यानी उसकी जो कोई यथा योग्य अवस्था होती है, उपशम होता है क्षोपशम होता है क्षय होता है, तो द्रव्य कर्म के जो उपशम आदि अवस्थाएं होती है वो पुद्गल की पर्याय है पुद्गल की शक्ति है, ये तो हम मान्य करते हैं ना, ये जो यहां सारे बताए हैं बोर्ड पर हमने थोड़ा चित्र के द्वारा दिखाने का प्रयत्न किया है, कर्मों में जो कोई अवस्था होती है वो कर्म की अपनी पर्याय है, बरोबर क्यों सरला बेन कि नहीं बरोबर है, हाँ जीव उसका कर्ता हर्ता नहीं है, कर्म का बंद होता है, कर्म का उपशम होता है, जो कर्मों का क्षय होता है, कर्म की अवस्था कर्म में उसके स्वयं की योग्यता से होती है, जीव उसको बिल्कुल नहीं करता है। भले शास्त्र में कथन आए, क्योंकि निमित्त के द्वारा कथन तो हो सकता है परंतु निमित्त से कार्य नहीं होता, तो जीव उसका कर्ता हर्ता है ही नहीं। पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करना जीव का काम है। तो हमारा काम है ना कर्म का उपशम करना, क्यों नहीं? कर्म का उपशम कर्म में होता है। हमारा पुरुषार्थ हमारे में चलेगा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, कि वो छोड़कर शरीर में होगा या कर्म में होगा? अपने में होगा। जीव को स्वयं तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाना चाहिए। यह हम तो उपयोग तो आत्मा पे ले जाना चाहते हैं, किसमें उपयोग लगाना है? पहले में पहले तत्व निर्णय करने में। तत्व निर्णय हुआ नहीं है, अभी बहुत सारे डामाडोल परिस्थिति है, शंका है, निशंक नहीं हुआ है तत्व के बारे में, और बस अंदर जाना चाहता है। ये ऐसा नहीं, वो मार्ग नहीं है उसका बेन। हर एक का प्रश्न यही ना, आपका भी सवाल था ना, कैसा अंदर जाना है? तत्व निर्णय में उपयोग लगाना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लिखा है, तत्व विचार करते हुए तत्व निर्णय में बिल्कुल एकाग्र हो जाना, उसमें तत्व निर्णय करने में, तत्व विचार में। इस पुरुषार्थ से, कौन सा पुरुषार्थ कहा? तत्व निर्णय यही पुरुषार्थ है और अन्य कोई पुरुषार्थ नहीं है। इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय की सिद्धि अपने आप होती है। उसकी जो सहजता है, तो वो सहज होता है, इसको भी हमने स्वीकार नहीं किया है, इसलिए ऐसा लगता है कि हम क्या पुरुषार्थ करें, या भगवान ने हमारी बात देखी है स्वयं पहले ही, तो हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? सवाल है ना, भगवान ने हमारी पर्याय होनी है जब देखी है, तो हमारा उसमें क्या पुरुषार्थ रहा? तो इसने ना पुरुषार्थ को समझा है, ना ही सर्वज्ञ के स्वरूप को समझा है। ये जब निर्णय हो जाता है, पांच समवायों का कहो, सर्वज्ञता का कहो, या क्रमबद्ध पर्याय का कहो, या अकेले हम द्रव्य को भी समझेंगे कि द्रव्य उसी को कहते हैं जो अनादि अनंत पर्यायों का समूह है और जो गुणों का समूह है, तो उसमें प्रत्येक द्रव्य के अनादि अनंत पर्याय क्रमबद्ध है, एक के बाद एक होने वाले ही होती है, इसका स्वीकार होता है। उसके निमित्तों का भी सहज स्वीकार हो जाता है, क्योंकि जैसे हमारी पर्याय अनादि अनंत निश्चित है, तो वहां हमारे लिए जो निमित्त है वो भी निश्चित होगा कि नहीं होगा? तो उसको हम लाए तो भी आएगा कि जो आना है वही आएगा? नहीं नहीं, हमें ये निमित्त नहीं चाहिए, हमें महाविदेह वाले भगवान सिमंदर ही निमित्त चाहिए। आपको जुगमंदर चलेगी कि नहीं चलेगी भाई? तो ये हमने अभी निमित्त उपादान को भी नहीं समझा है। तो जब तक हमारे ये सारे भ्रमणाएं चलती है, तब तक तत्व निर्णय नहीं हुआ। तत्व निर्णय होते ही ये सहज रूप से ये कर्मों की अवस्थाएं होती है, उसमें कोई अन्य पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। इसलिए कहा यहां, इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय की सिद्धि अपने आप यानी स्वयमेव होती है। वो स्वयमेव कैसी होती है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। बोलो चौबीसों भगवान की जय।